जब भी आपके जहन में अल्लाह का चेहरा आए, ये दो सिफात साथ में आने चाहिए, जुल जलाल वल इकराम, इन दो सिफात के साथ। सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए हिजाबुहुन नूर, अल्लाह के ऊपर एक वेल है, अल्लाह का हिजाब जो है वो नूर है, यानी अल्लाह के हिजाब से हर तरफ रोशनी फैलती है। और ये हदीस जो आपके सामने मैंने इस वक्त पढ़ी है, हदीस सही मुस्लिम की, ये मेराज के मौके के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आकर बताया कि मेरी अल्लाह से गुफ्तगू हुई है, तो उस मौके पर आपने ये अल्फाज फरमाए थे हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह का हिजाब, अल्लाह का वेल इटसेल्फ रोशनी से भरपूर है, लाइट है। अबू जर गफारी ने पूछा या रसूल अल्लाह हल राई तरबक, क्या आपने अल्लाह को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुन अन नरा, इट वॉज कम्प्लीटली नूर, मैं कैसे देखता, मतलब सिर्फ लाइट ही लाइट थी। और वो लाइट भी लाइट जो थी वो कहां से आ रही थी? अल्लाह के हिजाब में से आ रही थी, अल्लाह की जात नहीं देखी आपने, अल्लाह के ऊपर एक पूरा हिजाब था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह का वेल पूरा लाइट है। तो पूरा का पूरा रब कैसा होगा? वल्लाहु आलम। जिसका दिल चाहता है वो अपनी जिंदगी में कुर्बानी देना, दीन पर अमल करना, जन्नत के लिए कोशिश करना हिम्मत करके शुरू कर दे, तब इंशाल्लाह हमें जन्नत में पहुंचकर अल्लाह का दीदार नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया हिजाबुहु नूर लौ कशफहु, अगर अल्लाह अपना हिजाब रेस कर दे ला अहरकत सुबुहात वजहि मन तहिया इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, अगर अल्लाह अपना हिजाब रेस कर दे तो जो अल्लाह के चेहरे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए वजहिही, जो अल्लाह के चेहरे से रेज आए तमाम मखलूकात को वो खत्म कर दें, इतना ज्यादा अल्लाह जो है वो नूर से बना हुआ है। कैसा है? वल्लाहु आलम। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह अगर अपना वेल हटा दे तो मखलूकात एग्जिस्ट ना कर सके, यानी अल्लाह का हिजाब में होना इज वन ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हिजाब में रहना अल्लाह की शान रहमानी की एन मैनिफेस्टेशन है, मोहब्बत की झलक है। तो इसी आयत में बताया गया कि हर मखलूक खत्म होने वाली है सिवाय अल्लाह के। एक तवील हदीस आती है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि हर मखलूक खत्म हो जाएगी, इवन जिब्राइल अलैहि सलाम भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को डिफाइन किया कि जब पहला सूर फूंका जाएगा, आपको मालूम है ट्रम्पेट एक और फिर दूसरा ट्रम्पेट जो है वो ब्लो किया जाएगा, जब पहला ट्रम्पेट ब्लो किया जाएगा तो जितनी मखलूकात होंगी जमीन पर उन सबको मौत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे सिवाय इल्ला मनशा अरबुक, सिवाय जिसको अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ताला मलकुल मौत से पूछेंगे कौन बाकी है, मलकुल मौत कहेंगे वजह का बाकिल करीम, अल्लाह आपका नोबल चेहरा बाकी है, वह अब्दुका और आपका बंदा यानी कि मैं, मलाकुल मौत अपने आप को कहेंगे अल्लाह आपका करीम चेहरा बाकी है, वह अब्दुका और मैं, वह अब्दुका जिब्राइल व मीकाल व इसराफील, यानी मलाकुल मौत इन तीन फरिश्तों के नाम लेंगे कि ये तीन फरिश्ते और मैं बाकी हैं और आप अपनी जगह बाकी हैं। अल्लाह हुक्म देगा, हदीस में आता है मीकाल की सोल निकाल लो, मलकुल मौत मिकाइल की रूह जो है वो निकाल लेंगे, फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, फिर मलकुल मौत कहेंगे वजहु का बाखिल करीम अब्दु का व अब्दु जिब्राइल व इसराफील, अल्लाह ताला हुक्म देंगे इसराफील की रूह निकाल ली जाए, फिर अल्लाह इसी तरह सवाल करेगा दोबारा हु रिमेन्स, मलकुल मौत जवाब देंगे अल्लाह आपका चेहरा बाकी है, मैं और जिब्राइल बाकी हैं। अल्लाह मलकुल मौत को हुक्म देगा जिब्राइल की रूह निकाल ली जाए। और जो अहदीस में अरबी के अल्फाज आते हैं अगर आप नियरेस्ट टू उर्दू ट्रांसलेशन उसको करें तो मलकुल मौत जिब्राइल अलैहि सलाम की रूह कब्ज करेंगे, जिब्राइल अलैहि सलाम चेहरे के बल जमीन पर गिर जाएंगे और इस तरह से कि अल्लाह की हमद करते हुए गिरेंगे और आपके पर पूरे जो है वो अल्लाह को ग्लोरीफाई करते हुए फैल जाएंगे। तो ये एक अल्लाह की मैजिस्ट्री है जो आपको नजर आती है। और फिर अल्लाह ताला पूछेगा मलकुल मौत से अब कौन बाकी है, मलकुल मौत कहेगा अब्दुका सिर्फ मैं, اللہ کہے گا ملک الموت کو بھی موت آ جائے اور ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ فرمائے گا کل من علیہا فان, جو کچھ اس میں ہے اس کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقِ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور پھر اللہ خود سے سوال کرے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ, آج اصل میں کس کی ڈومینین ہے؟ اور خود ہی اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لِلَّهِ وَاحِدُ الْقَحَّارِ, اللہ خود جو صرف القہار کے طور پر باقی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کو موت آنی ہے تو آپ کی اور میری کیا حقیقت ہے؟ تو اس موت کی تیاری اس موت سے پہلے کی جاتی ہے. اس موت کی تیاری کے لیے عمر کا انتظار نہیں کیا جاتا, ابھی تو میں صرف 20 سال کی ہوں, ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں, ابھی تو میں صرف 60 سال کی ہوں. صرف 60 سال کی؟ اس موت کی تیاری جس لمحے موت کا احساس ہو جائے اسی لمحے کی جاتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس الباقی سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. دیکھیں کچھ باقی نہیں رہنے والا, نہ ہمارے گھر, نہ ہمارے وارڈروبس, نہ ہمارے ایسٹس, نہ ہمارا بینک بیلنس, نہ ہمارا سٹاک, کچھ باقی نہیں رہنے والا. صرف اور صرف الباقی باقی رہنے والا ہے, وہ رب جس کا چہرہ جلال اور اکرام والا ہے. تو اس اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لیتا ہے, جو اپنے آپ کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر لیتا ہے, جو اپنی زندگی میں اسلام کو پرائیورٹی پر لے آتا ہے, اللہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ایسی زندگی دے گا انشاءاللہ کہ اس کا نام باقی رہے گا. اس لیے کہ جس نے آج یہاں اللہ کے راستے پر محنتیں کر لیں, اس کو آخرت میں جنت ملے گی. اور جنت میں پھر کال آؤٹ کیا جائے گا ایک ایک جنتی کا نام جس نے اللہ کے راستے پر محنت اور قربانی دی ہوگی, ورنہ کوئی باقی نہیں رہنے والا. آپ کو اپنی دادی کی دادی کا نام آتا ہے؟ آپ کی دادی کی دادی کا نام کیا تھا؟ میجورٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, مجھے خود معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم نا. کچھ عرصے کے بعد آپ کی بھی 2 جنریشنز گزر جائیں گی اور آپ کا اور میرا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ کے پوتوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی پوچھے گا آپ کی دادی کی دادی کا نام کیا تھا, وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں. تو کوئی باقی نہیں رہنے والا. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو اسلام سے اٹیچ کیا جائے. مخلوقات ختم ہو جاتے ہیں, آئیڈیا باقی رہتا ہے. ان اسلام از این آئیڈیا. اپنے آپ کو آئیڈیا سے جوڑ لیں, آپ ہمیشہ کی زندگی سے اٹیچ ہو جائیں گے. جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے گا وہ جنت میں جا کر اپنے آپ کو باقی رہنے کی پوزیشن میں رب کی رحمت سے لے آئے گا. دنیا نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے. جس جس انسان نے اپنی زندگی کو اسلام سے اٹیچ کر لیا, اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو کرنے کا وعدہ کیا ہے. جیسے میڈگر ایور کی وائف نے کہا تھا, میڈگر ایور جو امریکن سوشل ایکٹیوسٹ تھا, اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا نا اس کو, اس لیے کہ وہ افریقن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا تھا. تو جب اس کی اوباما کی سیکنڈ انوگریشن سپیچ میں میڈگر ایور کی وائف کو بلایا گیا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے میلکم ایکس, میڈگر ایور, مارٹن کنگ جونیئر 2, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آئیڈیا کے پیچھے لگایا تھا. ہیومن ریس کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی تھیں. سوشل ایکٹیوسٹ تھے اور ایک ایک کر کے ان تینوں کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو جب میڈگر ایور کی وائف کو بلایا گیا تھا کہ وہ آ کر سپیچ کرے اوباما کی سیریمنی میں, تو اس نے ایک جملہ یہی بولا تھا, یو کین کل اے مین بٹ یو کین ناٹ کل این آئیڈیا. اسلام از این آئیڈیا, اور اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ابو جہل نے اونٹ کا گٹ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا تھا جب آپ حرم میں سجدہ کر رہے تھے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹ کے گٹ کو ہٹانے کی اپنے والد کے اوپر سے کوشش کر رہی تھیں, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی جس کا مفہوم آتا ہے کہ میری بیٹی رو نہیں, ایک دن آئے گا کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا, اور آپ کو اور مجھے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے. کتنا آپ کا میرا حصہ ڈلے گا, بس اس کو اتنا ہی فائدہ اس کا پہنچنے والا ہے. تو مسلمان ہونے کی نعمت ہو, آج زندہ ہونے کی نعمت ہو, آج قرآن کے سامنے بیٹھنے کی نعمت ہو, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. तो जो जिंदगी में कुरान खुला है इसको अब बंद नहीं होने देना. आयत नंबर 28 में आगे फरमाया, फाबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे. अपनी मेहनतों को सिर्फ दुनिया में इन्वेस्ट नहीं करें, दुनिया किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी. अपनी मेहनतों को वहां इन्वेस्ट करें जहां की इन्वेस्टमेंट हमेशा बाकी रहने वाली है. वो तो हमारे आसपास तो इतने बहुत से लोगों के कोर्स भी मौजूद हैं, और मुसलमान जो होता है वो हर जगह से फायदा उठाता है. मुसलमान जो होता है वो हर जगह से अच्छी बात को ले लेता है. गांधी का कोट आपको अक्सर किताबों में लिखा हुआ मिलता है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो. आज की फिक्र करो, क्या पता कल मौत आ जाए. और बिल्कुल यही चीज आपको और मुझे इस्लाम सिखाता है कि हमें अपने कल का कुछ भरोसा नहीं है. तो जो नेकी का इरादा इस वक्त भी आपके जहन में आ रहा है, हम सबके जहनों में जो जो नेकी का इरादा आ रहा है, मैं अब ये नेक काम करूंगी, अब मैं एक अपने अंदर ये इस्लाह का फैक्टर लेकर आऊंगी, आज ही कर जाइएगा, डिले मत कीजिएगा. जितना डिले होता है उतना इंसान जो है उसको पेंडिंग पर डालता जाता है. अल बाकी के साथ अटैच होना है तो अपनी नेकियों को बाकी रखने के लिए उनको फौरन अपने अमल का हिस्सा बना लीजिए. आगे फरमाया आयत नंबर 29, यस अलुहु मन फिस समावाति वल अर्दी कुल यौमिन हुआ फी शान. जमीन और आसमानों में जो भी हैं सब अपनी हाजतें उसी से मांगते हैं, हर आन वो नई शान में है. जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो उसी से सवाल करता है. तो फिर कोई इंसान अपने आप को अल्लाह से इंडिपेंडेंट कैसे समझ सकता है? कोई एग्नोस्टिक हो, कोई एथियस्ट हो, कोई नाशुकरा मुसलमान हो, वो कैसे कह सकता है कि मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है? वो कैसे सोच सकता है कि उसको अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना? जितना कहेगा उतना उसकी मोहताजी जो है वो वाज़े होती चली जाएगी. और सूरह रहमान जो है एक ओपन इन्विटेशन है तमाम इंसानों के लिए, इसलिए कि इसमें ये नहीं है आया कि मुसलमान जो आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह से सवाल करते हैं. यस अलुहु मन फिस समावाते. अभी आपको बताया था मन आता है हर आकिल मखलूक के लिए, तो इस मन में सूरह रहमान के इस मुकाम पर एक ओपन डिक्लेरेशन है कि सिर्फ मुसलमान अल्लाह से सवाल नहीं करते, हर इंसान, हर जिन, हर फरिश्ता, कायनात की हर शय अपनी हर नीड के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहताज है. यस अलूहू के अंदर तमाम मखलूकात को फिट कर दिया गया. यस अलू के दो माने किए जाते हैं अरबी जुबान में, एक आता है सवाल करना, एक होता है जरूरत होना. दोनों में क्या फर्क है अभी देखते हैं. सवाल करना या जरूरत होना. आप देखें यहां पर आया है यस अलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, सवाल करते हैं उससे जो भी आसमानों और जमीनों में. क्या सवाल करते हैं, ये आया? ये तो नहीं आया. यस अलुहु उससे सवाल करते हैं मन जो भी असमावात वल अर्द, जमीन और आसमानों में है. लेकिन क्या सवाल करते हैं ये नहीं आया. तो हमने पिछली क्लासेस में ये चीज देखी थी कि जब इस तरह से ऑब्जेक्ट को ना लाया जाए तो उससे स्कोप को ब्रॉड कर दिया जाता है. लितवस्सो आपको बताया था, इसके अंदर वुस्सत है, यानी हर मखलूक की हर जरूरत डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं. अब हर जरूरत में बैठकर अगर आप और मैं लिस्ट भी बनाएंगे उस लिस्ट में सब चीजें नहीं आने वाली. हर मखलूक की हर जरूरत सिर्फ रहमान पूरी करता है, सिर्फ उसी के पास ताकत है, उसी के पास मैजेस्टी है कि वो हर मखलूक की हर हाजत पूरी कर सके. तो मांगते क्यों नहीं उससे, हाथ क्यों नहीं उठाते उसके सामने, गिड़गिड़ाते क्यों नहीं उसके सामने, बजाय इसके कि हम लोगों को ढूंढें कि वो हमारे लिए दुआ करें. हाँ, अहदीस ये बताती हैं कि आप किसी नेक इंसान को ये कह सकते हैं जो जिंदा है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें, कहा जा सकता है. जैसे भी आपको मैंने बताया था कि दुआ में वसीला बनाने के लिए अहदीस बताती हैं कि आप अल्लाह के नामों का वसीला बना सकते हैं, इसी तरह से जो ऑथेंटिक तरीका है वसीला बनाने का, उसमें किसी नेक इंसान से कहा जा सकता है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए. शर्त यह है कि वो नेक इंसान जिंदा हो, शर्त यह है वो दुनियावी जिंदगी में मौजूद हो. आलम बरज़ख में मौजूद नेक इंसानों से नहीं मदद मांगने की बात हो रही, आपको किसी हदीस में नहीं मिलेगा, आपको किसी सहाबा के अमल में नहीं मिलेगा कि आपको कहा जाए कि वो जो कब्रों में लेटे हुए हैं आप उनके पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप भी मेरे लिए दुआ कर दें। वो तो अपने लिए अब दुआ नहीं कर सकते, वो तो अब अपने सदकाए जारिया के मोहताज हैं, या औलाद के मोहताज हैं, या अपने उन शागिर्दों के मोहताज हैं जो उनकी बताए हुए इल्म पर अमल करेंगे तो उन तक उसका सवाब पहुंचेगा। तो एक दूसरा पैटर्न अहादीस में जो मिलता है वसीला बनाने का, दिस इज ऑथेंटिक वे आप किसी नेक इंसान को दुआ के लिए कह सकते हैं। बट ऑन अ इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आप सहाबा की जिंदगियों को स्टडी करें, सहाबा रेयरली एक दूसरे को एक दूसरे के लिए दुआ के लिए कहा करते थे। ये नहीं मैं कह रही कि आप ना कहें, मेरा काम है जो इल्म है उसको मैं आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद आपको खुद बैलेंस आ जाएगा कि आपने कहां बैलेंस करना है। सहाबा का मामूल नहीं होता था कि वो हर एक को पकड़ के कहें प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मेरा नाम ये है, आप मेरा नाम याद रखेंगे ना,